नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
There is an urgent need for us.
हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति VB नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समा